अब यहां से आगे किस्सा शुरू होता है हजरत ईसा अलैहि सलाम का। आप कह लीजिए बनी इसराइल के बाद अब नसारा क्रिश्चियंस की हिस्ट्री कैसे। इन्नल्लाहस्तफा आदम व नूह व आले इब्राहिम व आले इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने आदम और नूह और आले इब्राहिम और आले इमरान और को तमाम दुनिया पर तरजीह देकर अपनी रिसालत के लिए मुंतखब किया था। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। क्या पता चला कि अल्लाह से आप कुछ छुपा नहीं सकते। दुनिया में हम किसी को कोई बात बताएं फिर आगे से क्या कहते हैं, किसी को ना बताना। अल्लाह कहता है मुझसे छुपा नहीं सकते। और वो उस वक्त भी सुन रहा था कब, इस कालत इमरात इमरान रब्बी इन्नी नजरतुलका इन्नी नजरतुलका माफी बतनी मुहर्ररा फी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी। जब इमरान की औरत ये कह रही थी मेरे परवरदिगार इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नजर करती हूँ, वो तेरे ही काम के लिए वक्फ होगा, मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। ये है आज की रोल मॉडल हमारे लिए, आज की काबिले तकलीद शख्सियत उम्मे मरियम। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम रिवायत में हन्ना आता है। इनके बाप हैकल में एक बहुत बाइज्जत मुकाम पे फाइज थे। अभी मरियम अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट में थी कि बाप का इंतकाल हो गया। अब एक तरफ तो ये औरत जो पेट में बच्चे को रखती है अपने ऊपर रहम खाती, रोती धोती, हाय मेरी बच्ची मेरा बच्चा इसका क्या बनेगा, हाय इसको कौन पालेगा, ये है। लेकिन दूसरी तरफ ये औरत कह रही है इन्नी नजर तुलक माफी बतनी मुहर्ररा। कहाँ है आज ऐसी माएँ जो हन्ना की तरह की हों, और कहाँ है ऐसे बाप जो जकरिया जैसे हों। ये हैं वो लोग जिन्होंने नस्लों की फिक्र की। ये है नानी हजरत ईसा की। कुछ भी कह लीजिए आज नसारा के अकायद कुछ भी सही, लेकिन आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा गिरोह क्रिश्चियंस का। किसकी दुआएं हैं? नानी की दुआएं हैं, माँ की दुआ है। आज के दौर में यही जरूरत है। आज की औरत बच्चे के बिगड़ने से पहले, अभी उसके दुनिया में आने से पहले अल्लाह से ये मन्नतें मान ले कि इन्नी नजर तुलक माफी बतनी मुहररा। आप देखिए कि औरत की सबसे कीमती चीज औलाद होती है और औलाद को पेश करती है कि अल्लाह इसको पेट में रखकर भी अपना नहीं समझूंगी, कैसे नजर करती है, वो तेरे ही काम के लिए वक्फ होगा। आज हमारी औलादें किसके लिए वक्फ है? दुनिया की तालीम के लिए और दुनिया की कामयाबियों के लिए। मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा। गम देखिए यह है कि कहीं मेरी ये फरमाइश रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि असल चीज काबिलियत नहीं कबूलियत है। कबूलियत की फिक्र कीजिए, तू सुनने और जानने वाला है। फिर जब वो बच्ची इसके यहाँ पैदा हुई तो इसने कहा मालिक मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई, हालांकि जो कुछ उसने जाना था अल्लाह को इसकी खूब खबर थी, और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। खैर मैंने इसका नाम मरियम रख दिया, मैंने इसे और इसकी आइंदा नस्ल को शैतान मरदूत के फितने से तेरी पनाह में दिया। कितनी समझदार माँ थी। अभी बच्ची पैदा हुई है और उसके बच्चों को पकड़कर अल्लाह की पनाह में देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा जो पैदा होता है तो शैतान उसको कचोका लगाता है, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के, और एक सहाबी का नाम लिया आपने। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने पहले से कह दिया था कि मैं इसको आपकी पनाह में देती हूँ। इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर्रजीम। आज की नानियाँ इतनी बाशऊर हैं, वो तो उस वक्त कपड़े जमा कर रही होती हैं, वो तो टोकरियां ले लेके फिर रही होती हैं, वो तो बादाम बताशे बना रही होती हैं कि बेटी को खिलाने हैं। याद रखिए नस्लों की इसलाह करनी है, पेट से निकलते ही बच्चे को शैतान मरदूत से बचने की दुआ दे दें। एक माँ एक छोटे से बच्चे को उठाकर एक इमाम वक्त के पास लाई, कहने लगी कि इमाम साहब मेरे बच्चा पैदा हुआ है, जरा बताइए मैं इसकी तरबियत कैसे करूँ। उन्होंने बच्चे की तरफ निगाह डाली और कहा कि ऐ माँ तूने आने में देर कर दी, आने में देर कर दी, अभी तो ये कुछ महीनों का है। अगर तू चाहती है कि ये बेहतरीन बच्चा साबित हो तो तू उस वक्त आती जब ये तेरे पेट में था। याद रखिए माँ के पेट से ही बच्चे की आधी से ज्यादा शख्सियत बन चुकी होती है। माँ की माँ, माँ के मामूलात, माँ की सोचे, माँ की पसंद नापसंद बच्चे पे असरअंदाज होती है। तो अगर अच्छी नस्लें पैदा करनी है तो अच्छी माएँ देनी पड़ेंगी। किसी ने कहा तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नस्लें दूंगा। तो आज बच्चों को बचाने के लिए माँओं को सही करना पड़ेगा। बच्चों के बिगाड़ से पहले माँओं का बिगाड़ दूर करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी के पास आए तो दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना, कि अल्लाह हम दोनों को भी शैतान से बचा, और अगर हमारे नसीब में कोई औलाद है इस मुलाकात से तो उसको भी शैतान से बचा। फरमाया, ये दुआ पढ़ने के बाद अगर कोई बच्चा हो भी गया तो अल्लाह ताला उसको शैतान से बचाएगा। एक सवाल है शादीशुदा बहनों भाइयों से, किस किस को ये दुआ आती है, कौन कौन इसका एहतमाम करता है? फिर क्यों रोते हैं बच्चों के बिगाड़ पे? असबाब तुमने खुद जमा की अपने बच्चों को बिगाड़ने के, हर मुमकिन तरीके से हमने शैतान के हाथों में उसको दे दिया। अल्लाह से दुआ कीजिए कि आज हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। गर्मी से बचाते बच्चे को, सर्दी से बचाते, एलर्जी से बचाते, पोलियो की वैक्सीन करवाते, न जाने पेट में कितने उस मासूम को इंजेक्शन लगवाते, चंद दिन के बच्चे को उठा उठा के डॉक्टरों के पास भागते, लेकिन शैतान से नहीं बचाते। हर वो चीज़ जो बच्चे को हाइपर कर दे, बच्चे को बिगाड़ दे, बच्चे को दूसरी तरफ कर दे, तो आप देखिए कि वो शैतान वाली है। और आज की माँ तो खुद उसको लाके बिठाती है कि चल तू जरा थोड़ा मेरी जान छोड़ दे और दूसरी तरफ ले आ। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा दे। आखिरकार इसके रब ने इस बच्ची को बखुशी कबूल फरमा लिया, इसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया को इसका सरपरस्त बना दिया। अब वो बच्ची जिसका नाम मरियम रखा गया बड़ी हो गई। अगला सीन देखिएगा, ज़करिया अलैहिस्सलाम जब कभी उनके पास मेहराब में जाते तो उनके पास कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान पाते। पूछते, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आ गया? वो जवाब देती, अल्लाह के पास से आया है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। यहाँ से देखिए, अच्छी बच्ची थी ना, हर चीज़ को अल्लाह से जोड़ रही हैं। आज की कोई बच्ची होती तो न जाने वो किस किस्म की बात कर रही होती। और ये भी पता चला कि जवानी में उस बच्ची ने अपने आप को अल्लाह के रास्तों में लगा दिया। ये हाल देखकर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, परवरदिगार अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता कर, तू ही दुआ सुनने वाला है। मरियम को क्यों नहीं कह दिया कि मरियम तू बड़ी पहुंची हुई है, मेरे लिए दुआ कर दे, देखना तेरे पास बिन मौसम फल आए हैं, तू मेरे लिए दुआ कर। यहाँ से बड़ी अमल की बात है, हम लोगों में खो जाते हैं, फलां बड़ा नेक है उससे दुआ कराओ, उससे उलझ जाओ। नहीं, नेक लोगों की सोहबत में बैठकर दिल नरम होता है, दिल में गुदाज आता है, पर आपको खुद हरकत करनी पड़ेगी। आज हम कहते हैं मौलवी साहब दुआ कर दो, मौलवी साहब क्या दुआ करेंगे? आप जो दुआ कर सकते हैं, मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दो, आप दुआ कीजिए अपने बच्चों के लिए। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के अमल से पता चलता है कि बीबी मरियम के पास फल देखकर उनको ख्याल आ गया कि औलाद की नेमत से तो मैं भी महरूम हूँ। और ये दुआ आ गया, हम इंशाल्लाह सूरह मरियम में डिटेल से पढ़ेंगे, कहा परवरदिगार मुझे अपनी कुदरत से नहीं को औलाद अता कर। और आप देखिए जो औलाद की नेमत से दूर हैं भी वो ये दुआ मांग सकते हैं। अब कब कितनी दफ़ा मांगना है, जब जितनी दफ़ा आप दिल की गहराई से मांग सके। हमने दुआओं को बाज दफा वजीफों और गिनतियों में ऐसे डाल दिया कि खुशी और खुदू भी खत्म हो जाता है। खैर, जवाब में फरिश्तों ने आवाज दी जबकि वो मेहराब में खड़े नमाज अदा कर रहे थे, अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देता है, वो अल्लाह की तरफ से एक फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा, इसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी। कितनी खुशी हुई होगी सुनकर, कमाल दर्जे का जाबित होगा यानी सेल्फ कंट्रोल्ड होगा, नबूवत से सरफराज होगा और सालेहीन में शुमार किया जाएगा। अल्लाह आज भी जो औलाद से महरूम है उनको नेक सवाले औलादे अता फरमाए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार भला मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भांज है। तो कोई पूछे फिर मांगा क्यों था, है ना इंसान की कमजोरी, पहले मांग लेता है फिर मिल जाए तो कहता है ये हो कैसे गया। जैसे अक्सर लोग कहते हैं हाय बिजली आ जाए, फिर बिजली आ जाती है तो क्या कहते हैं, कुछ और मांगा होता है ना, ना शुक्र। जवाब मिला ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। अर्ज किया, मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दीजिए, बुढ़ापे में औलाद की खुशखबरी मिली यकीन ही नहीं आ रहा, कोई टेस्ट तो कर नहीं सकते थे उस दौर में। कहा कैसे दिल को यकीन आए? कहा निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत ना कर सकोगे, ना करोगे ना कर सकोगे। इस दौरान में अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहना। कैसे अल्लाह की नेमतों में दबने का एहसास बंदे की जुबान बंद कर देता है। आज होते तो बेबी शावर की तैयारियां कर रहे होते, आज होते तो सेलिब्रेशन और दावतें और पार्टियां। आप देखेंगे कुरान पढ़ने के बाद गैर मखसूस तरीके से हमें नबियों का तर्ज जिंदगी आसान और सहल नजर आएगा। खैर, अब क्या हुआ तीसरा मंजर, जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगजीदा किया यानी चुन लिया और पाकीजगी इख्तियार की और तमाम दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। रुकिए जरा, बीवी मरियम को ये खुशखबरी कब मिली? जब वो इबादत के लिए हुजरे में थी। बीवी मरियम जवान बच्चियों की तरह किसी मॉल में होती या किसी कैफे में बैठी होती तो क्या ये खुशखबरी मिलती? इससे पता चलता है खुशखबरियां पाने से पहले इंसान को अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ना पड़ता है। और देखिए कि चुना क्या, आज लोग चुने जाएं तो विक्ट्री स्टैंड पे खड़े कर दिए जाते हैं और दुनिया उनको देखे। कभी भी मरियम तुझे चुना क्या, अपनी खिदमत के लिए चुन लिया, दुआ करें अल्लाह हमें भी चुन ले। हज उमरे पे जाएं तो एक टाइटल जगह जगह लिखा होता है, खादमे हरमैन शरीफैन, दोनों हरमों की खिदमत करने वाले। इतना प्यारा लगता है वो टाइटल, मुझे लगता है दुनिया के हर टाइटल से ये खूबसूरत टाइटल है। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को अपने दीन की और अपने घर की हिफाजत के लिए चुन ले। ऐ मरियम अपने रब की ताबे फरमान बन कर रहे, अल्लाह आज की बच्चियों को भी ऐसा ही बनाए रखे और उसके आगे सर बसजूद रहो, और जो बंदे इसके हजूर झुकने वाले हैं इनके साथ तू भी झुक जा। तो अल्लाह ताला एक पैगाम देते हैं कि जब जवानी पाक होगी, जब जवानी बेदाग होगी, तो फिर नस्लें भी ईसा जैसी पैदा होंगी। देखिए, माँ मरियम होगी ना तो बच्चा ईसा होगा, माँ फातिमा है तो बच्चा हुसैन और हसन है। आज सारी बात एंड पे माँ पे ही टूट रही है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अच्छी माएँ बना दे। आप अक्सर ये तो सोचते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं, आज से ये सोचना शुरू कर दें कि मैं माँ कैसी हूँ। और रश के काबिल हैं वो माएँ जिनको अपने बच्चों के धड़के लगे हुए हैं, जो हर वक्त अपने बच्चों के लिए ही सोचती हैं, उनकी इस्लाह करती हैं, उनकी तरबियत करती हैं। अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाते हैं, ए नबी, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको वही के जरिए से बता रहे हैं, वरना आप उस वक्त मौजूद ना थे जब हैकल के खादिम ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन हो अपने अपने कलम फेंक रहे थे, और ना तुम उस वक्त हाजिर थे जब इनके दरमियान झगड़ा बरपा था, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, हजरत ईसा का पूरा नाम, दुनिया और आखिरत में मुअज्जज़ होगा, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल किया जाएगा, लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी, और वह एक मर्द साले होगा। ये सुनकर मरियम बोली, परवरदिगार, अब इस पे जरा सा गौर कीजिएगा, परवरदिगार मेरे यहाँ बच्चा कहाँ से होगा, मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। बाइस्मत बच्चियां शादी से पहले बच्चे का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। गम ये लग गया कि ये खुशखबरी कहाँ से हो गई, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। और याद रखिए कि अल्लाह ने अंबिया कराम को आजमाया, यहाँ एक नबी की माँ को आजमाया जा रहा है। और औरत की कीमती मता उसकी इज्जत होती है, एक कंवारी लड़की के लिए बच्चे की खबर किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम इसको सह गई, क्यों? अल्लाह के फैसलों पर राजी थी। जवाब मिला ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, वो जब किसी काम के करने का फैसला फरमाता है तो बस कहता है कुन फयकून, हो जा, और वो काम हो जाता है। चलिए आज हम भी अपनी नस्लों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी नस्लों को हिदायत पे कायम रखना, अल्लाह हमारी नस्लों में से हजरत ईसा मूसा जैसे लोग पैदा करना, अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा दे। फरिश्तों ने फिर अपने सिलसिले कलाम में कहा, और अल्लाह इसे किताबो हिकमत की तालीम देगा, तौरात और इंजील का इल्म सिखाएगा, और बनी इसराइल की तरफ अपना रसूल मुकर्रर करेगा। और जब वह बहसियत रसूल बनी इसराइल के पास आए तो उसने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे सामने मट्टी से परिंदे की सूरत में एक मुजस्मा बनाता हूँ। अब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजजात हैं, उस दौर में तिब का दौर था तो अल्लाह ने उनको मौजजात भी ज्यादा इसी किस्म के दिए। और इसमें फूंक मारता हूँ और वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजात अंधे और कोड़ी को अच्छा करता हूँ और इसके इज्जन से मुर्दे को जिंदा करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में जखीरा करके रखते हो। इसमें तुम्हारे लिए काफी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। और मैं इस तालीम और हिदायत की तस्दीक करने वाला बनकर आया हूँ जो तौरात में से इस वक्त मेरे जमाने में मौजूद है। और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए बाज उन चीजों को हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम की गई। देखो मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। इसको हाईलाइट कीजिएगा, ईसा का कलाम है। क्या आज आप अपनी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स स्पेशली क्रिश्चियंस को ये जुमले नहीं सुना सकते? कितना खुश होंगे वो अपने प्यारे ईसा की बातें सुन के आपके जुबान से। तो याद रखिए दूसरों को माइल करने का तरीका क्या होता है कि उनको बताएं कि कुरान में हजरत ईसा के बारे में कितनी बातें हैं। या आले इमरान सूरत का तर्जुमा सुना दें। इमरान कौन थे? हजरत ईसा के नाना थे। सूरत मरियम आगे आप पढ़ेंगे आयत सूरत नंबर 19, उसका जाके तर्जमा बताइए। तो इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे कि वो और शौक रखेंगे कि आपकी किताब में हजरत ईसा का तذکرہ है। तो यकीनन फिर आपका हमारा कोई ना कोई आपस में ताल्लुक तो है। तो हजरत ईसा क्या कह रहे हैं? डरो अल्लाह से और इताअत मेरी करो। अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा रब भी है। इसको हाईलाइट कर लें। सारे अकीदे क्रिश्चियंस के इस एक जुमले के ऊपर खत्म हो जाते हैं। जीसस ने ये नहीं कहा मैं गॉड हूं, क्या कहा? वो मेरा रब है, बस तुम उसी की बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है। लोगों को ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए जब ईसा ने महसूस किया कि बनी इसराइल कुफर और इनकार पर आमादा है, तो उन्होंने कहा कौन अल्लाह की राह में मेरा मददगार होता है। इसको भी हाईलाइट करें। दीन के काम तनहा नहीं होते, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम ही क्यों ना हो। उनको भी अल्लाह के दीन को फैलाने और नाफिज करने के लिए साथियों की ज़रूरत होती है। आज कोई ये सोचता है ना कि मैं अकेला मेरे दीन का काम कर लूँगा और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तो ये कभी नहीं होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में मदद मांगी, हवारियों ने जवाब दिया। जवाब देखिए कितना प्यारा है, और अल्लाह हमें भी इसी जवाब का आदी कर दे। हम हैं अल्लाह के रास्ते के मददगार। चलें दुआ करते हैं, अल्लाह हमें अपने दीन के मददगार बना दे। हम अल्लाह पर ईमान लाए, आप गवाह रहे कि हम मुस्लिम यानी अल्लाह के आगे सरे इताज झुका देने वाले हैं। मालिक जो फरमान तूने नाजिल किया है हमने इसे मान लिया और रसूल की पैरवी कबूल की। हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा नाम भी गवाहों में लिख ले। फिर बनी इसराइल हजरत ईसा के खिलाफ खुफिया तदबीरें करने लगे। जवाब में अल्लाह ने अपनी खुफिया तदबीर की, और ऐसी तदबीरों में अल्लाह सबसे बढ़कर है। वो अल्लाह की खुफिया तदबीर ही थी जब इसने कहा कि ईसा अब मैं तुझे वापस ले लूंगा। देखिए ये पूरा वाक्या है रफा ईसा का। हमारा ईमान है आज भी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। जब दुश्मनों ने उनकी जान लेनी चाहिए तो अल्लाह तआला ने क्या किया? उनको बदन और रूह के साथ उठाया और आसमान पे ले गए। आज भी वो जिंदा है। अल्लाह के नबी सल्लम मेराज के मौके पे जब गए तो आपकी मुलाकात भी हुई थी। और हमारा ईमान है कि हजरत ईसा दुनिया में आएंगे। 100 से ज्यादा तवातर के दर्जे की हदीसें मौजूद हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कियामत से पहले दुनिया में आएंगे। फिर अमन चैन कायम होगा, वो इस्लाम के झंडे के नीचे आएंगे और नबी सल्लम के बिल्कुल पहलू में फिर दफन होंगे, शादी करेंगे, अमन होगा, चैन होगा। उनके दौर में जितने क्रिश्चियंस होंगे वो सब मुसलमान होंगे इनके हाथ पे, और बनी इसराइल यानी ज्यूस के साथ वो अपना मामला दूसरा करेंगे। तो आप देखिए ये सब कुछ पढ़कर इंसान को कितना यकीन आता है इस बात का कि कुरान और हदीस में जो फ्यूचर की बातें जब वो सच्ची होती हैं तो यकीन आ जाता है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है। क्या कहा है? ईसा मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझको अपनी तरफ उठा लूंगा, और जिन्होंने तेरा इनकार किया उनसे और इनकी माइयत से यानी उनके साथ से और इनके गंदे माहौल में इनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा। और तेरी पैरवी करने वालों को कयामत तक इन लोगों के ऊपर रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया। फिर तुम सबको आखिर मेरे पास आना है, ये है वापसी। उस वक्त मैं इन बातों का फैसला कर दूंगा जिनमें तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हुआ है, जिन लोगों ने कुफर और इनकार की रविश अख्तियार की। इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा दूंगा और वो कोई मददगार ना पाएंगे। और जिन्होंने ईमान और नेक अमली का रवैया अख्तियार किया, दुआ कीजिए अल्लाह हमें ईमान और नेक अमली का रवैया अख्तियार करने की तौफीक दे। इन्हें इनके अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे। और खूब जान लो कि जालिमों से अल्लाह हर किस मोहब्बत नहीं करता। आपने शायद नोट किया कि नहीं, इस बारे में जालिम का लफ्ज़ बहुत आ रहा है। और अल्लाह के साथ कुफर शिर्क किसी दूसरे को जोड़ना ये जुल्म ही तो है। ए नबी, आयात और हिकमत से लबरेज तस्करे हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने इसे मट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। क्या इशारा है कि ईसा को सन ऑफ गॉड क्यों कहते हो, कि वो उनका बाप नहीं था? तो फिर आदम को भी तो कहो, उनकी तो माँ भी नहीं थी। यानी ये कितना बेबस कर देने वाला अंदाज है अगर इस पर कोई गौर करे। और हुक्म दिया कि हो जा, वो हो गया। ये असल हकीकत है जो तुम्हारे रब की तरफ से बताई जा रही है, और आप उन लोगों में शामिल ना हो जो शक करने वाले हैं। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों का भी शक दूर कर दे। ये इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ऐ नबीन से कहो कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाए और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आए, और खुदा से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। ये बिल्कुल सही वाकयात हैं। हकीकत ये कि अल्लाह के सिवा कोई खुदावंद नहीं। वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बाला और जिसकी हिकमत निज़ाम आलम में कार फरमा है। बस अगर ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़ें तो इनका मुफसिद हो जाना साफ खुल जाएगा, और अल्लाह तो मुफसिदों के हाल से वाकिफ ही है। इन आयतों में असल में चैलेंज दिया गया था नबी सल्लम के पास आने वाले वफद नजरान को कि अगर तुम्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बातें समझ नहीं आ रही तो चलो खुले मैदान में चलते हैं और वहां जाके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अब मैं जो सच्चा है तो उसकी बात को सच कर दे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके मुंह से ये बात निकलवाई नहीं, वरना आपने फरमाया कि ये वादी आग बरसाती। अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। ऐ नबी कहो, ऐ अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां है। इसको हाईलाइट कीजिए। तबलीग का खूबसूरत नुस्खा, सुलह करवाने का खूबसूरत नुक्ता, खानदानी घरेलू मसाइल को हल करने का खूबसूरत तरीका क्या? कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। और वो क्या है? कॉमन ग्राउंड्स पे बात करो। हम इख्तलाफात को हवा देते हैं और जलती पे तेल पड़ता है। कहा नहीं, जो चीजें तुम्हारे हमारे बीच में कॉमन है उस पर बात करेंगे। ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब ना बना ले, इस दावत को कबूल करने से अगर वो मुंह मोड़े तो साफ कह दो कि गवाह रहो हम तो मुस्लिम, यानी सिर्फ अल्लाह की बंदगी और इताअत करने वाले हैं। अहले किताब, तुम इब्राहिम के दीन के बारे में हमसे क्यों झगड़ते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहिम के बाद ही नाजिल हुई, फिर क्या तुम इतनी भी बात नहीं समझते? यानी ये दोनों फिरके हजरत इब्राहिम के बाद वजूद में आए थे। इसके बावजूद दोनों गिरोह ये दावा करते हैं कि हजरत इब्राहिम यहूदी थे या नसरानी थे। कि ये तो बात ऐसे ही है कि गोया के कोई बच्चा अपने माँ बाप से कहे कि मैं आपकी शादी पे आया था, भाई तुम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। यहाँ एक और बात समझिए कि हजरत इब्राहिम की पर्सनैलिटी में कशिश क्यों थी इतनी? हर बंदा उनसे ताल्लुक जोड़ना चाहता है, तो वो कशिश थी तौहीद की वजह से। लिख लीजिए, आप जितना अल्लाह से जुड़ते जाएंगे लोग आपसे प्यार करेंगे, आप अल्लाह से मोहब्बत करें लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। तुम लोग जिन चीजों का इल्म रखते हो इनमें तो खूब बहसें कर चुके, अब उन मामलों में क्यों बहस करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ इल्म भी नहीं? अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना ईसाई, बल्कि वो तो एक मुस्लिम और यकसू थे। दुआ करनी अपने लिए, अल्लाह में भी यकसू कर दे, फोकस्ड कर दे। और वो हरगिज मुशरिकों में से न थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने का सबसे ज्यादा हक अगर किसी को पहुंचता है तो इन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने इसकी पैरवी की। अब ये नबी और इसके मानने वाले इस निस्बत के ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह सिर्फ इन्हीं का हामियों मददगार है जो ईमान रखते हों। ऐ ईमान लाने वालों, अहले किताब में से एक गिरोह चाहता है। अब आप देखिए, नस्लों की हिफाजत चाहते हैं ना, तो इस आयत पे गौर कीजिएगा। हदफ क्या है दुश्मन का? और आपने, मैंने अपने बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, उनको बताना है कि इस्लाम का इल्म हासिल करो ताकि जब कोई गैर इस्लामी चीजें तुम्हारे सामने आए तो तुम उसके साथ इल्मी जिहाद कर सको। कैसे? ए ईमान लाने वालों, अहले किताब में से गिरोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें राह रास्त से हटा दे, हालांकि दर हकीकत वो अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं। ए अहले किताब, क्यों अल्लाह की आयात का इनकार करते हो हालांकि तुम खुद इसका मुशाहिदा कर रहे हो? अहले किताब, क्यों हक को बातिल का रंग चढ़ा कर शुबे वाला बनाते हो? क्यों जानते बूझते हक को छुपाते हो? अहले किताब में से गिरोह कहता है, इस नबी को मानने वालों पर जो कुछ नाजिल हुआ है, इस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इससे इनकार कर दो। देखिए बहुत बड़ी साजिश थी लोगों को इस्लाम के खिलाफ करने के लिए, ताकि लोग कहेंगे कि अच्छा ये इस्लाम ही अच्छा नहीं है। अच्छा फिर क्या करो, और इस पर सुबह को ईमान लाओ और शाम को इसका इनकार कर दो, शायद इस तरकीब से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं। आज भी ये साजिश है, लोग नाम के दिखावे के मुसलमान होते हैं, कुछ अरसे के बाद हट जाते हैं और कहते हैं नहीं हमें तो इस इस्लाम में कोई खैर नहीं मिली। वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो यही बात है कि फिर लोग कहेंगे अच्छा एक्स मुस्लिम, आप जरा लिख के तो देखिए एक्स मुस्लिम्स, इतनी फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी ये साजिश पकड़ी गई। नीज से लोग आपस में कहते हैं कि अपने मजहब वाले के सिवा किसी की बात ना मानो, तासुब भड़काया जा रहा है। ए नबी इनसे कह दो कि असल में तो हिदायत अल्लाह की हिदायत है, इसको हाईलाइट करें, सिर्फ अल्लाह को हक है कि वो दूसरों को हिदायत दे या उनको गाइड करे, और ये उसी का दीन है कि किसी को वही कुछ दिया जाए जो कुछ तुमको दिया गया, या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब के हजूर पेश करने के लिए तुम्हारे खिलाफ कभी हुज्जत मिल जाए। ए नबी इनसे कहो कि फजलो शर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे अता फरमाए, वो वसी नजर है, वो सब कुछ जानता है, अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है, और इसका फजल बहुत बड़ा है। अपने लिए दुआ करें, अल्लाह हमें वसअत कल्बी दे दे। आज मुसलमानों को इसकी भी बहुत ज़रूरत है। याद रखिए अल्लाह ताला की ये दो सिफात आज उम्मत मुस्लिमा में आ जाएं, क्या वसअत कल्बी और इल्म हासिल करना, तो पूरी दुनिया पे अल्लाह ताला मुसलमानों का गलबा कर सकता है। फिर फरमाया वमिन अहलिल किताब मन इंता मन हु बिकिंतार। अब देखिए यहाँ अहले किताब की तारीफें भी हो रही हैं। ये इस्लाम की खूबी है कि दुश्मन को बुरा कहकर उसकी हर चीज़ को बुराई में नहीं पेश किया, बल्कि जिनमें खैर होती है जिनमें खूबी है उसका भी तस्करा किया गया। अहले किताब में कोई तो ऐसा है कि अगर तुम इसके एतमाद पर मालो दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा करेगा, और किसी का हाल ये है कि अगर तुम एक दीनार के मामले में भी इस पर भरोसा करो तो वो अदा ना करेगा, इल्ला यह कि तुम इसके सर पर सवार हो जाओ। इनकी इस अखलाकी हालत का सबब यह है कि वो कहते हैं उम्मियों यानी गैर यहूदी लोगों के मामले में हम पर कोई पकड़ नहीं होगी, और ये बात वो महज झूठ खड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि इन्हें खूब मालूम है कि अल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं फरमाई। आखिर क्यों इनसे बात फुर्स ना होगी, जो भी अपने अहद को पूरा करेगा और बुराई से बच कर रहेगा वो अल्लाह का महबूब बनेगा। अल्लाह हमें अपने अहदों को पूरा करने वाला बना दे, अल्लाह हमें बुराइयों से बचने वाला बना दे, और अल्लाह तो हमें अपना महबूब बना ले, क्योंकि परहेजकार लोग अल्लाह को पसंद हैं। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को परहेजकार बना दे। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, तो इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह क़यामत के रोज़ इनसे बात ना करेगा। सोचिए ना इनकी तरफ देखेगा और ना इन्हें पाक करेगा, बल्कि इनके लिए तो सख्त दर्दनाक सजा है। आप में से अक्सर माएँ हैं, बच्चे के साथ नाराजगी की हद का क्या तरीका होता है, आप बात करना छोड़ देती हैं, पहले चीखते हैं चिल्लाते हैं डांटते हैं डपटते हैं कोसने देते हैं, पर जब शिद्दत की नाराजगी आती है ना तो आप कहते हैं जाओ मैं तुमसे कलाम नहीं करूँगी, और बिगड़ी हुई औलाद है कहेगी शुक्र है अल्लाह का अब आपकी डांट तो नहीं सुननी पड़ेगी, घर में सुकून होगा। लेकिन जिस औलाद के दिल में नरमी है वो घबरा जाएगा, अब तो माँ बात ही नहीं कर रही। तो सोचिए अगर क्यामत के दिन हम जाएं और अल्लाह कहे कि मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, किस मुंह से अल्लाह का सामना करेंगे। وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ। अब यहाँ उनके मजहबी उलमा की कुछ ख्यानतों का तस्करा है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह जुबान को उलट फेर करते हैं कि तुम समझो कि जो कुछ पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती। वो कहते हैं ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता, वो जानबूझकर झूठ बात अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। किसी इंसान का ये काम नहीं। अब यहाँ से देखिए दीन का काम करने वालों को नसीहत, और वो क्या कि दीन के साथ जोड़ो, अल्लाह के साथ लोगों को जोड़ो, खुद से ना जोड़ो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज कुछ मुसलमान शख्सियत परस्ती के नाम पर दीन वालों से जुड़ने लगते हैं, उलमा को सजदे करते हैं, उनके हाथ चूमने, उनके आगे माथे टेकने। अल्लाह ताला कहते हैं किसी नबी का तो ये काम नहीं था, आज किसी को इसकी कैसे इजाज़त हो सकती है। क्या किसी इंसान का ये काम नहीं कि अल्लाह तो इसको किताब और हुक्म और नबुवत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि अल्लाह की बजाय तुम मेरे बंदे बन जाओ, वो तो यही कहेगा कि क्या कहेगा कि सच्चे रब्बानी बन जाओ। रब्बानी कौन होता है? रब वाला, वो आलिम जो अमल भी करे। रब्बानी वो है जो तरबियत करे, जैसा कि इस किताब की तालीम का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। वो तुमसे हरगिज़ ये ना कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफर का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो? तो क्या पता चला? कभी अपनी ज़ात से ना जोड़े लोगों को। कोई अपनी मिसाल भी दें तो दिल में नीयत क्या हो कि किसी को हिदायत मिल जाए। जब तक आप दूसरों की नज़रों से अपने आप को बड़ा होना या उनकी तारीफ़ों से पाक नहीं करेंगे, याद रखिए कि बात में असर भी नहीं आएगा। याद करो, अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था। यह है वो अहद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानने का अहद है। आज मैंने तुम्हें किताब व हिकमत व दानिश से नवाजा है, कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास इसी तालीम की तस्दीक करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुमको इस पर ईमान लाना होगा और इसकी मदद करनी होगी। आप लिख सकते हैं कि इस आयत की रोशनी में हर नबी ने अपनी उम्मत को ये कहा था कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो जाएं तो तुम उनको मानोगे। और इसी आयत की रोशनी में आज के यहूद और नसारा को इस्लाम कबूल करना है अपनी किताबों की रोशनी में। बात वाज़े? ये इरशाद फरमाकर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हाँ हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाए वही फासिक है। अब आगे हम मुसलमानों को झंझोड़ा जा रहा है, पारे का एंड है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जो दौलत जो नेमत अल्लाह ताला ने दी थी इस्लाम की सूरत में, उसको अल्लाह ताला हमारे सामने पेश करते हैं। अफ गैर दीनिल्लाहि यबगूना वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द। अब क्या ये लोग अल्लाह की इताअत का तरीका यानी दीनुल्लाह को छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? जरा सा सवाल करते हैं, क्या आज का मुसलमान अल्लाह के दीन को छोड़कर कोई और तरीके तो नहीं इख्तियार कर रहा? हालांकि आसमान और जमीन की सारी चीजें चारों ना चार यानी जानते या ना जानते बूझते अल्लाह ही किताबे फरमान है और उसी की तरफ सब को पलटना है। ए नबी, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, इस तालीम को मानते हैं जो हम पर नाजिल की गई, उन तालीमात को भी मानते हैं जो इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और औलाद याकूब पर नाजिल हुई, और इन हिदायत पर भी ईमान रखते हैं जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को इनके रब की तरफ से दी गई। हम इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते। क्या पता चला कि फ़र्क क्यों नहीं किया जाता? इसलिए कि सब एक ही सिलसिले की कड़ी थी। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम इसी किताब फरमान हैं। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु। इसको हाईलाइट करें। आज ये पैगाम अपनी नस्लों के दिमागों में रासिख करने की जरूरत है। क्या इस फरमाबरदारी इस्लाम के बाद सिवा जो कोई शख्स कोई और तरीका अख्तियार करना चाहेगा तो इसका वो तरीका हर किस कबूल ना किया जाएगा और वह आखरत में नामुराद होगा। ये जुमले मैंने इसलिए बोले कि कुछ माओं ने आके पूछा कि हमारे बच्चे पूछते हैं कि मामा आपको क्या पता कि शायद इस्लाम सच्चा मज़हब ना हो, शायद फलां 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 मज़हब ही ठीक हो। तो अल्लाह की ये बात बता दीजिए कि अल्लाह क़यामत के दिन सिर्फ उसी को कबूल करेगा। आप देखिए, हर मुल्क अपने ही जारी करदा नोट कबूल करता है ना, नकली जाली नोट बाद में बने हुए नोट कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो नहीं कबूल होते। तो क़यामत के दिन भी जो दीन जो तरीका ज़िंदगी कबूल होगा वो अल्लाह का दिया हुआ ये इस्लाम है। और अब ये पैदाइशी मुसलमानों को एक चोट दी जा रही है। कई फ़याहदिल्लाहु कौमन, कैसे हो सकता है कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत बख्शे? किनको? कफरु बाद ईमानिहिम व शहीदु अन्न रसूल हक्कु व जाहुमुल बैजिनात, जिन्होंने नेमत ईमान पा लेने के बाद फिर कुफर इख्तियार किया। ये कौन है? कभी आपने सुना कि कोई मुसलमान था और फिर काफिर हो गया? आटे में नमक के बराबर, पर इस आयत से तो लगता है बहुत से। यहाँ कुफर क्या है? रसूल की इत्तबा का इनकार। नाम का इस्लाम, नमाज इस्लाम की, रोज़ा इस्लाम का, हज इस्लाम का, पर तरीका ज़िंदगी नहीं रसूल से मुख्तलिफ। तो याद रखिए, इस बारे में बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि नबी के तरीके को मानोगे फिर तुम्हारा इस्लाम कबूल होगा। हालांकि वो इस बात पर खुद इस बात की गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल हक पर है और उनके पास रोशन निशानियां भी आ चुकी। अल्लाह जालिमों को तो हिदायत नहीं दिया करता, इनके जुल्म का सही बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की फिटकार रहे। इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना इनकी सजा में तख़फीफ होगी और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता वो लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपने तर्ज अमल की इसलाह कर लें। ए अल्लाह हमें अपनी इसलाह की तौफीक दे। ए अल्लाह हम तेरे हजूर तौबा करते हैं। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है, मगर जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार किया फिर अपने कुफर में बढ़ते चले गए, इनकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। यकीन रखो जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया और कुफर की हालत ही में जान दी, इनका दर्द महसूस करें। दर्द तो उनको भी होती है, चोट तो उनको भी लगती है, पेट में माँ ने उनको भी रखा, दर्द माँ ने भी सहे, लेकिन उनके नसीब में क्या कुफर था? इनमें से कोई अगर अपने आप को सजा से बचाने के लिए रुए जमीन भर भी सोना फिदिये में दे तो इसे कबूल ना किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सजा तैयार है और वो अपना कोई मददगार ना पाएंगे। क्यामत के दिन वो बड़ी बड़ी ऑफर्स देंगे कि अल्लाह ये ले ले और आज अजाब से बचा दे। तो ये था तीसरा पारा। मेरे दिल में तो बस शुक्रगुजारी ही आ रही है, किस बात की कि अल्लाह ने मुझे इतने प्यारे नबी की उम्मत में से भेजा। इस दीन की कदर करनी है, आप आखिर में एक छोटा सा काम लेकर जाएं, अपने बच्चों के साथ आज कम से कम 15 से 20 मिनट आपने बैठना है और आज के इस बारे में जो आपको सोच दी गई है ना, वो आपने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में उनके साथ शेयर करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी नस्लों की हिफाज़त फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाईन बि रहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين